एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी किताब में गोता लगाने वाले हैं जिसने कह सकते हैं कि विचारों की दुनिया में ना सचमुच भूचाल ला दिया था। किताब का नाम है डार्विन्स डेंजरस आइडिया।
हाँ, डेनियल डेनेट की।
और लेखक हैं डेनियल डेनेट। नाम में ही डेंजरस यानी खतरनाक है, और यकीन मानिए इसके विचार भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं।
नमस्कार।
बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई जीव विज्ञान के जो स्टूडेंट्स हैं बस उन्हीं के लिए है।
हाँ,
ये डार्विन का जो सिद्धांत है ना विकासवाद का, उसको लेती है और पूछती है भाई इसका हमारी जिंदगी पर, हमारे सोचने के तरीके पर, हमारे समाज, यहाँ तक कि ईश्वर और नैतिकता के बारे में जो हमारी सदियों पुरानी धारणाएं हैं उन पर क्या असर पड़ता है।
अच्छा।
और डेनेट दिखाते हैं कि ये असर बहुत गहरा है, और वाकई कुछ लोगों के लिए तो ये खतरनाक हो सकता है।
हाँ, सहज तो करते हैं।
तो चलिए इस तथाकथित खतरनाक विचार की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि डेनियल डेनेट आखिर कहना क्या चाहते हैं।
हाँ, पर इससे पहले कि हम किताब में गहरे उतरें, थोड़ा लेखक को जान लेना अच्छा रहेगा। डेनियल डेनेट।
हाँ, डेनियल सी डेनेट कौन थे?
डेनियल क्लेमेंट डेनेट 1942 से 2024 तक अमेरिका के एक बहुत ही माने हुए दार्शनिक थे, लेखक थे और कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी।
कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी? वाओ।
हाँ, मतलब मन कैसे काम करता है उसकी स्टडी। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त टफ्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। वहाँ वो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे और सेंटर फॉर कॉग्निटिव स्टडीज के को डायरेक्टर भी।
और उनमें सबसे खास बात क्या थी पता है? वो कई नावों पर एक साथ सवारी करते थे। मेरा मतलब है कई सब्जेक्ट्स के माहिर थे,
जैसे कि
फिलॉसफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, और विकासवादी जीव विज्ञान। और मजे की बात यह है कि वो खुद बायोलॉजिस्ट नहीं थे।
अच्छा।
हाँ, लेकिन विकासवाद को उन्होंने इतनी गहराई से समझा कि उसके जो फिलोसॉफिकल नतीजे हैं ना उन पे रोशनी डाल सके। ये जो मिला जुला ज्ञान था उनका, वही उन्हें खास बनाता है ना।
हाँ, बिल्कुल। और यही खूबी उन्हें एक बहुत ही अनोखा नजरिया देती है। वो डार्विन के सिद्धांत को सिर्फ मतलब जानवरों या पौधों के विकास तक ही नहीं देखते, बल्कि उसे एक एल्गोरिथम की तरह देखते हैं, जैसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा कुछ, जो बिना किसी बाहरी मदद या दिमाग के खुद ब खुद नतीजे पैदा कर सकता है।
एक एल्गोरिथम, इंटरेस्टिंग।
हाँ, और उनकी ये जो वैज्ञानिक और दार्शनिक समझ थी ना, इसी ने उन्हें हौसला दिया कि वो पारंपरिक सोच को चुनौती दें, खासकर धर्म और चेतना के जो रहस्य माने जाते हैं।
तो फिर इस किताब का मतलब मेन आइडिया क्या है? डेनेट का सबसे बड़ा दावा क्या है इसमें?
डेनेट का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि डार्विन का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है ना, नेचुरल सिलेक्शन।
हाँ, नेचुरल सिलेक्शन।
वो सिर्फ बायोलॉजी का एक नियम भर नहीं है, ये एक यूनिवर्सल एसिड है।
यूनिवर्सल एसिड?
हाँ, मतलब एक ऐसा तेजाब जो हर चीज पर असर डालता है, जिस भी बर्तन में रखो उसे गला देता है।
बाप रे, सुनने में ही कितना पावरफुल लग रहा है। मतलब ये विचार सिर्फ बायोलॉजी की लैब तक ही नहीं रहता, ये कहाँ कहाँ असर डालता है फिर?
हर जगह। डेनेट कहते हैं कि ये एसिड हमारे मन, हमारी चेतना, हमारी भाषा, संस्कृति, नैतिकता, धर्म, हर उस चीज के बारे में हमारी जो पारंपरिक समझ है ना,
हाँ,
जिसे हम बहुत खास या मतलब रहस्यमयी मानते आए हैं, उसको धीरे धीरे घोल कर बदल देता है। उनका तर्क है कि प्राकृतिक चयन एक पूरी तरह से अंधी प्रक्रिया है, मैकेनिकल है, एल्गोरिदम पर चलती है।
अंधी प्रक्रिया?
हाँ, मतलब इसे किसी ऊपर वाले डिजाइनर या किसी खास मकसद की जरूरत नहीं है, बस इसे काफी वक्त दे दीजिए, लाखों करोड़ों साल, और ये प्रक्रिया अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ सरल चीजों से जटिल चीजें बना सकती है, एक बैक्टीरिया से लेकर इंसान के दिमाग तक।
और यहीं आकर ये विचार खतरनाक लगता है ना, क्योंकि ये हमारी सबसे प्यारी धारणाओं पर सवाल उठाता है कि हम इंसान ब्रह्मांड के केंद्र में हैं, हमारी चेतना कोई जादुई चीज है, हमारी नैतिकता भगवान की देन है। ये सब विचार इस एसिड में घुलने लगते हैं।
हाँ, लेकिन क्या ये मानना इतना आसान है कि बिना किसी मास्टर प्लान के सिर्फ संयोग और जरूरत से इतनी खूबसूरत और जटिल दुनिया बन गई? ये थोड़ा,
हाँ, मुश्किल सवाल है। और डेनेट इसी से जूझते हैं। वो कहते हैं कि हमें जटिलता समझाने के लिए स्काई हुक्स की जरूरत नहीं है। स्काई हुक्स, ये क्या चीज है?
स्काई हुक्स यानी वो जादुई हुक जो आसमान से लटकते हैं और चीजों को ऊपर खींच लेते हैं, जैसे ईश्वर की मर्जी या कोई रहस्यमयी जीवन शक्ति। ये आसान जवाब लगते हैं, पर डेनेट के मुताबिक ये असली जवाब नहीं है, ये बस सवाल को टाल देते हैं।
तो अगर स्काई हुक्स नहीं तो फिर क्या? चीजें ऊपर कैसे उठी, मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बनी?
डेनेट कहते हैं हमें चाहिए क्रेन्स।
क्रेन्स
जैसे बिल्डिंग बनाने वाली क्रेन।
हाँ बिल्कुल वही।
जैसे एक क्रेन जमीन से शुरू होकर धीरे धीरे ईंट दर ईंट सामान उठाकर ऊंची इमारत खड़ी करती है, वैसे ही प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो सरल शुरुआत से धीरे धीरे परत दर परत जटिलता का निर्माण करती हैं।
अच्छा।
और डेनेट के लिए डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत वो अब तक का खोजा गया सबसे शक्तिशाली क्रेन है, जो जीवन की पूरी इमारत, उसकी सारी जटिलता और विविधता को खड़ा कर सकता है बिना किसी आसमान से लटकते हुक के।
एक में डेनेट एक तरह से भूमिका बांधते हैं, यही वो डार्विन के विचार को यूनिवर्सल एसिड कहते हैं, और ये स्काईहुक्स बनाम क्रेन्स का जो बेसिक फर्क है वो समझाते हैं। वो विकासवाद को एक एल्गोरिदम की तरह पेश करते हैं जो एक बहुत बड़े डिजाइन स्पेस को खंगालता है।
ये डिजाइन स्पेस वाला आइडिया थोड़ा और समझाएंगे, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है।
हाँ, डिजाइन स्पेस का मतलब है, आप समझ लीजिए, सभी मुमकिन जैविक रूपों और संरचनाओं का एक काल्पनिक दायरा, जैसे प्रकृति के पास बनाने के लिए अनगिनत ऑप्शंस हो।
अच्छा, जैसे एक मेन्यू कार्ड हो बहुत बड़ा।
हाँ कुछ वैसा ही। तो विकास का जो एल्गोरिदम है वो बिना किसी लक्ष्य या सोच के इस स्पेस में अलग अलग रास्ते तलाशता है, और जो डिजाइन माहौल के हिसाब से फिट बैठते हैं वो टिक जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये किसी इंजीनियर की तरह सोच समझ कर नहीं होता, बल्कि एक अंधी खोज की तरह है।
समझ गया। जैसे प्रकृति हजारों लाखों चाबियां बनाकर देख रही हो, और जो ताले में फिट हो जाए वो चल जाती है। अच्छा, फिर आता है भाग दो, जो शायद जीव विज्ञान पर ज्यादा फोकस करता है।
हाँ, भाग दो बायोलॉजी पर केंद्रित है। इसमें डेनेट एडेप्टेशनिज्म का बचाव करते हैं।
एडेप्टेशनिज्म, ये क्या है?
ये वो विचार है कि जीवों के ज्यादातर अंग या उनका व्यवहार किसी न किसी खास काम के लिए प्राकृतिक चयन के जरिए विकसित हुए हैं। वो अनुकूलन है, अडेप्टेशंस हैं, जो जिंदा रहने और नस्ल बढ़ाने में मदद करते हैं।
यहीं पर उनकी कुछ बहसें भी होती हैं दूसरे वैज्ञानिकों से, है ना, जैसे वो स्टीफन जे गोल्ड के साथ उनकी काफी बहस चली थी।
बिल्कुल। डेनेट यहाँ स्टीवन जे गोल्ड जैसे बहुत मशहूर विकासवादी जीव विज्ञानी के विचारों पर खुलकर बहस करते हैं। गोल्ड और उनके साथी मानते थे कि विकास में संयोग यानी चांस और ऐतिहासिक अड़चनों का भी बड़ा हाथ होता है, और हर चीज सिर्फ अनुकूलन नहीं होती। डेनेट इन बातों को पूरी तरह नकारते नहीं, लेकिन उनका मुख्य जोर इस बात पर है कि आलोचक कभी कभी इन चीजों का इस्तेमाल करके डार्विन के प्राकृतिक चयन की असली ताकत को कम आंकते हैं या उसे सीमित करने की कोशिश करते हैं। डेनेट मानते हैं कि प्राकृतिक चयन ही वो मुख्य इंजन है जो जीवन की अद्भुत जटिलता गढ़ता है।
और इसी भाग में वो रिचर्ड डॉकिंस का मीम्स वाला आइडिया भी आता है। ये आजकल वाले इंटरनेट मीम्स नहीं है ना?
नहीं नहीं, वो वाले नहीं, ये है विचारों वाले मीम्स।
अच्छा।
डेनेट डॉकिंस के मीम्स के विचार को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मीम्स यानी सांस्कृतिक विचार या इकाइयां, जैसे कोई धुन, कोई फैशन, कहावत, कोई टेक्नोलॉजी या कोई मजाक भी।
हाँ।
एक तरह से डेनेट के लिए ये सिर्फ संस्कृति समझने का तरीका नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि विकास का एल्गोरिथम सिर्फ बायोलॉजिकल चीजों, जीन पर ही नहीं बल्कि सूचना, विचार पर भी काम करता है।
अच्छा, तो ये मीम्स वाला आइडिया एक तरह से पुल का काम करता है जीव विज्ञान से दर्शन की तरफ। ये दिखाता है कि ये एसिड अब हमारे विचारों और संस्कृति तक भी पहुंच गया।
एकदम सही पकड़ा। ये मीम्स का विचार सीधे भाग तीन की जमीन तैयार करता है, जो मन, चेतना और नैतिकता जैसे बड़े दार्शनिक सवालों से जुड़ा है।
तो अब आते हैं भाग तीन पर, मन, अर्थ और नैतिकता। यही आकर बात सबसे ज्यादा पेचीदा और शायद खतरनाक हो जाती है ना? चेतना, जिसे हम इतना खास, इतना इंसानी समझते हैं, क्या डेनेट उसे भी विकासवाद के दायरे में ले आते हैं?
निश्चित रूप से। और यहीं डेनेट सबसे ज्यादा पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं। वो तर्क देते हैं कि जिसे हम चेतना कहते हैं वो कोई आत्मा जैसी रहस्यमयी अभौतिक चीज नहीं है।
तो फिर क्या है?
बल्कि ये हमारे दिमाग की बहुत ही जटिल सूचना प्रसंस्करण, मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का नतीजा है, दिमाग के अंदर चलने वाली अरबों खरबों गणनाओं का एक उत्पाद, और यह क्षमता इसलिए विकसित हुई क्योंकि इसने हमारे पूर्वजों को दुनिया को समझने, योजना बनाने और जटिल सामाजिक माहौल में जिंदा रहने में जबरदस्त मदद की।
और जीवन का अर्थ, जिसके लिए इंसान सदियों से खोज करता रहा है, क्या वो भी बस दिमाग का बनाया हुआ कुछ है?
डेनेट के अनुसार हाँ, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में कोई पहले से तय ऊपर से दिया गया अर्थ नहीं है। अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पहाड़ों में या किताबों में खोजते हैं।
तो फिर?
बल्कि अर्थ हमारे दिमाग द्वारा विकसित की गई एक चीज है। डेनेट इसे एक तरह का यूजर इल्यूजन कहते हैं।
यूजर इल्यूजन मतलब ये असली नहीं है, धोखा है?
नहीं, धोखा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ये असली नहीं है। ये असली है, लेकिन ये दुनिया की अंदरूनी सच्चाई नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक उपयोगी नक्शा या इंटरफेस है, जो हमें दुनिया में जीने, लक्ष्य बनाने, चीजों को महत्व देने में मदद करता है।
जैसे कंप्यूटर का डेस्कटॉप।
हाँ, बढ़िया उदाहरण है। जैसे कंप्यूटर का डेस्कटॉप हमें जटिल फाइलों को आसान आइकॉन के रूप में दिखाता है, वो आइकॉन असली फाइल नहीं है पर काम करने के लिए बहुत उपयोगी है। वैसे ही अर्थ हमारे लिए दुनिया को जीने लायक बनाता है। अर्थ बनाते हैं, खोजते नहीं।
और नैतिकता, सही गलत की हमारी समझ, अगर वो भी बस विकास की कोई रणनीति है, जैसा कि आपने पहले इशारा किया था, तो फिर क्या अच्छे बुरे का कोई मतलब ही नहीं रहा? ये तो बहुत
डिप्रेसिंग लगता है।
नहीं, डेनेट ऐसा नहीं कहते कि नैतिकता का कोई मतलब नहीं, बल्कि वो नैतिकता को एक प्राकृतिक आधार देने की कोशिश करते हैं, धर्म से हटकर।
अच्छा,
कैसे?
उनका तर्क है कि हमारी नैतिक भावनाएं जैसे दया, न्याय की इच्छा, धोखे पर गुस्सा, ये सब इसलिए विकसित हुई क्योंकि ये सामाजिक जीवन जीने वाले प्राणियों के लिए फायदेमंद की। सहयोग करना, नियमों का पालन करना, अपने समूह का साथ देना, इन सब ने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने और अपने जीन आगे बढ़ाने में मदद की।
तो मतलब ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी?
हाँ, एक तरह से। तो नैतिकता कोई दैवीय आदेश नहीं, बल्कि समाज में एक साथ रहने की व्यावहारिक रणनीतियां हैं जो विकास के क्रम में उभरी और जिन्हें हमने बाद में तर्क और संस्कृति के जरिए और बेहतर बनाया है, रिफाइन किया है। ये निराशाजनक नहीं, बल्कि हमें अपनी नैतिकता को समझने और उसे बेहतर बनाने की ताकत देता है।
वाह, ये तो सच में विचारों की पूरी दुनिया को हिला देने वाली बातें हैं। अगर इस पूरी किताब से कुछ मुख्य संदेश या थीम निकालने हो तो वो क्या होंगे, एक दो पॉइंट्स में बताएं।
पहली और सबसे बड़ी थीम तो यही है, विकासवाद एक सार्वभौमिक एल्गोरिथम है। ये सिर्फ बायोलॉजी का नियम नहीं, बल्कि जटिलता पैदा करने का एक सामान्य तरीका है जो कहीं भी काम कर सकता है, जहां विविधता, चयन और नकल की प्रक्रिया हो, चाहे वो जीन हो, विचार हो या कंप्यूटर प्रोग्राम।
दूसरी थीम, जैसा आपने कहा, पारंपरिक द्वैतवाद का खात्मा, यानी मन बनाम शरीर, डिजाइन बनाम सहयोग, अर्थ बनाम मशीन। डेनेट दिखाते हैं कि ये पुराने बंटवारे झूठे हैं, चेतना जैसी ऊंची चीजें भी भौतिक नीची चीजों से प्राकृतिक तौर पर उभर सकती हैं बिना किसी जादुई छलांग के।
तीसरा, स्काई हुक्स की जगह क्रेन्स पर जोर। डेनेट हमें बार बार याद दिलाते हैं कि मुश्किल सवालों के जवाब चमत्कारों या रहस्यमयी ताकतों में नहीं, बल्कि जमीनी, धीमी, प्राकृतिक प्रक्रियाओं में खोजने चाहिए। जैसे हम अक्सर किसी बड़ी सामाजिक समस्या के हल के लिए किसी करिश्माई नेता या एक मास्टर प्लान स्काई हुक का इंतजार करते हैं।
हाँ, कोई जादू की छड़ी घुमा दे।
बिल्कुल, डेनेट का नजरिया हमें छोटे स्थानीय जमीनी प्रयोगों, क्रेन्स पर ध्यान देने को कहेगा जो धीरे धीरे वास्तविक सुधार लाएं।
चौथा, डिजाइन का लोकतंत्रीकरण। ये मुझे बहुत पसंद आया है, यानी अद्भुत जटिल डिजाइन बनाने के लिए किसी बुद्धिमान डिजाइनर की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक शयन खुद ही वो काम कर देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के भी समाज में नई चीजें उभर सकती हैं, जैसे भाषा का विकास या बाजारों का काम करना।
बिल्कुल। और पांचवा, मन, अर्थ और नैतिकता की प्राकृतिक जड़ें। ये चीजें आसमान से नहीं टपकी, ना ही ये कोई रहस्य हैं जिन्हें सिर्फ आस्था से समझा जा सकता है। ये विकास की लंबी कहानी के हिस्से हैं। ये समझना हमें अंधविश्वास से मुक्त करता है और हमें तर्क और सबूतों के आधार पर अपनी समझ को बेहतर बनाने का अधिकार देता है।
इस किताब में ऐसे कई विचार हैं जो दिमाग में घूमते रहते हैं। कुछ सबसे यादगार विचारों या कोटेशंस की बात करें, पहला तो वही डार्विन का विचार, एक यूनिवर्सल एसिड है, ये सिर्फ तोड़ता नहीं बल्कि बदलकर एक नई शक्ल देता है।
हाँ, और दूसरा वो स्काई हुक्स बनाम क्रेन्स का फर्क। स्काई हुक यानी पहले दिमाग फिर चीजें वाली सोच, जैसे ईश्वर ने पहले सोचा फिर दुनिया बनाई। क्रेन यानी
पहले चीजें फिर दिमाग वाली प्रक्रिया, जैसे सरल प्रक्रियाओं से धीरे धीरे दिमाग और चेतना खुद उभरे, ये पूरी सोच को पलट देता है।
डेरेट ने यह भी कहा कि डार्विन का विचार शायद अब तक का सबसे बेहतरीन विचार है जो किसी इंसान के दिमाग में आया है।
क्यों?
क्योंकि ये जिंदगी उसके मकसद और मतलब को बिना किसी जादू टोने के भौतिकी और कारण कार्य के सामान्य नियमों से जोड़ देता है।
बिल्कुल, और अर्थ के बारे में उनकी वो बात बहुत गहरी है। दुनिया में कोई पहले से मौजूद अर्थ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अर्थ है ही नहीं।
हाँ,
अर्थ असली है, पर यह हमारे दिमाग का बनाया हुआ यूजर इल्यूजन है जो हमें जीने में मदद करता है। तो ये थोड़ी जिम्मेदारी भी डालता है हम पर कि हम अपना अर्थ खुद बनाएं, उसे खोजे नहीं।
ये सब सुनने में बहुत बौद्धिक और दार्शनिक लगता है, लेकिन क्या इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई मतलब है? क्या हम इन्हें कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं?
बिल्कुल। पहला तो है खुद को और अपने व्यवहार को बेहतर समझना। अगर हम जानते हैं कि हमारे कई डर, पसंद या पूर्वाग्रह, जैसे मीठा खाने की इच्छा या अपने समूह का पक्ष लेना, के पीछे विकासवादी कारण हो सकते हैं, तो हम उनके प्रति ज्यादा सचेत हो सकते हैं और उन्हें काबू में रख सकते हैं।
हाँ, जैसे ये समझना कि हमें अपरिचित लोगों या नए विचारों से शुरू में झिझक क्यों होती है।
बिल्कुल, वो हमें उस झिझक को तर्क से जीतने में मदद कर सकता है।
दूसरा, समस्याओं को सुलझाने का तरीका बदल सकता है। क्रेन्स का सिद्धांत हमें सिखाता है कि बड़े रातोंरात वाले चमत्कारी हलों का इंतजार करने की बजाय छोटे धीरे धीरे होने वाले, लगातार सुधरने वाले तरीकों पर ध्यान देना चाहिए।
चाहे वो बिजनेस चलाना हो, बच्चों को पढ़ाना हो या समाज की कोई नीति बनानी हो, छोटे कदम, लगातार फीडबैक और सुधार, ये ज्यादा कारगर हो सकता है।
तीसरा, आज की सूचना और विचारों की दुनिया में ज्यादा समझदार बनना, ये मीम्स वाला आइडिया काम आ सकता है।
बहुत ज्यादा। ये हमें समझाता है कि कैसे विचार, ट्रेंड, अफवाहें या गलत सूचनाएं फैलती हैं। क्यों कोई एक विचार वायरल हो जाता है? हम पूछ सकते हैं, क्या ये विचार इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि ये सच है, या ये बस हमारी किसी भावना या कमजोरी का फायदा उठा रहा है? ये हमें ज्यादा क्रिटिकल बनाता है।
चौथा, नैतिकता पर बात करने का एक नया आधार मिलता है। हमें सही गलत के लिए सिर्फ धार्मिक किताबों या पुरानी परंपराओं पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हम अपनी नैतिक भावनाओं को समझ सकते हैं, उनके विकासवादी कारणों पर विचार कर सकते हैं,
और फिर तर्क और बहस के जरिए उन्हें आज के जमाने के लिए बेहतर बना सकते हैं। ये ज्यादा खुली और प्रगतिशील नैतिकता की ओर ले जा सकता है।
और आखिर में
अपना व्यक्तिगत अर्थ बनाने की आजादी और जिम्मेदारी। अगर ब्रह्मांड ने हमारे लिए कोई खास स्क्रिप्ट में ही लिखी है, तो कलम हमारे हाथ में है। हम तय कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होगा।
ये शुरू में थोड़ा डरावना लग सकता है ना, क्योंकि कोई तैयार जवाब नहीं है।
हाँ, डरावना लग सकता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली और आजाद करने वाला विचार भी है।
इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे हैरान करने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि वैज्ञानिक नजरिए से दुनिया को समझना, भले ही वो हमारी आरामदेह धारणाओं को चुनौती दे, हमें भ्रम में जीने से बेहतर है। डेनिस दिखाते हैं कि विकासवाद को स्वीकार करने से इंसानियत कम नहीं होती, बल्कि हम अपनी असली जड़ों को, प्रकृति में अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमें अंधविश्वास से निकालकर वास्तविकता की ठोस जमीन पर खड़ा करता है।
और मुझे ये बात बहुत आकर्षक लगी कि कैसे एक वैज्ञानिक आइडिया, प्राकृतिक चयन, इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो हमारे मन, समाज, संस्कृति और जीवन के अर्थ तक के बारे में हमारी सोच को बदल दे। ये दिखाता है कि कैसे बहुत ही जटिल चीजें बहुत सरल नियमों से धीरे धीरे खुद बखुद उभर सकती हैं।
हाँ, बिना किसी जादू के।
हाँ, और ये कि एक पूरी तरह से प्राकृतिक दुनिया भी आश्चर्य, सुंदरता और गहरे सवालों से भरी हो सकती है, शायद पहले से भी ज्यादा। ये किताब वाकई दिमाग की खिड़कियां खोल देती है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।